दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, गुंचे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, बादल की तरह झूम के छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। एक बुद्ध पुरुष का जन्म इस पृथ्वी पर परम उत्सव का क्षण है। बुद्धत्व मनुष्य की चेतना का कमल है। जैसे बसंत में फूल खिल जाते हैं, ऐसे ही बसंत की घड़ियां भी होती हैं पृथ्वी पर। जब बहुत फूल खिलते हैं, बहुत रंग के फूल खिलते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं।
नमस्कार मित्रों, ओशो के जन्म दिवस 11 दिसंबर पर पूरी मानवता को बधाई के साथ हम आज का यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। धर्म गुरुओं द्वारा पापी कहकर धिक्कारे जाने वाली आत्मग्लानि से भरी हुई मानवता को बुद्धत्व का आमंत्रण देने वाले ओशो ने प्रत्येक मनुष्य को भगवान कहा है। ओशो कहते हैं, गुरु भगवान नहीं दे सकता, भय को काट सकता है। भय कटा कि तुम भगवान हो।
ओशो मनुष्य के मन की किसी भी दशा को नकारते नहीं हैं, वरन उसे रूपांतरित करने की प्रक्रिया बताते हैं। चाहे वह काम हो, चाहे वह क्रोध हो, मोह हो, धन हो, या कोई भी सांसारिक आसक्ति हो, उसे कंडम नहीं करते। हम जहां हैं ठीक वहीं से शुरुआत करते हैं और इन सभी भावनाओं को, मन के इन सभी रसों को बाधा न समझकर इन्हें परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां बना देते हैं। काम से राम तक, संभोग से समाधि तक कुछ भी गलत नहीं है।
आज के प्रवचन में भी ओशो प्यास जगाने पर जोर नहीं देते, वरन जहां जहां अभी हमारे मन की प्यास अटकी है उसे पूरी तरह भोगने की सलाह देते हैं। संसार में पूरी तरह से पकने की देशना देते हैं। यह प्रवचन जगत तरैया भोर की प्रवचन नंबर 2 से लिया गया है।
पहला प्रश्न, प्यास नहीं जगती, द्वार नहीं खुलते, प्यास को कोई जगा भी नहीं सकता। जल तो खोजा जा सकता है, प्यास को जगाने का कोई उपाय नहीं। प्यास हो तो हो, ना हो तो प्रतीक्षा करनी पड़े। जबरदस्ती प्यास को पैदा करने की कोई भी संभावना नहीं और जरूरत भी नहीं। जब समय होगा, प्राण पके होंगे, प्यास जगेगी। और अच्छा है कि समय के पहले कुछ भी ना हो। मन तुम्हारा लोभी है। जैसे छोटा बच्चा है, प्रेम की बात सुने, संभोग की चर्चा सुने कि वात्स्यायन का कामसूत्र उसके हाथ में लग जाए और सोचने लगे कि ऐसी काम वासना मुझे कैसे जगे, लोग पैदा हो जाए। लेकिन छोटे बच्चे में काम वासना पैदा हो नहीं सकती, प्रतीक्षा करनी होगी। पकेगी वीरी ऊर्जा, तभी काम वासना उठेगी। और जैसे काम वासना पकती है, ऐसी ही प्रभु वासना भी पकती है। कोई उपाय नहीं है, जल्दी जगाने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन सुन के बातें लोक पैदा होता है, मन में लगता है कब ईश्वर से मिलन हो जाए। देखा कि दया ईश्वर का गुणगान गा रही, मस्ती में डोलते देखा मीरा को, तुम्हारे भीतर भी लोभ सुख बुगाया, तुम्हारे भीतर भी लगा ऐसी मस्ती हमारी भी हो। तुम्हें ईश्वर से प्रयोजन नहीं है, तुम्हें ये जो मस्ती दिखाई पड़ रही है, ये मस्ती तुम्हें आकर्षित कर रही है। मस्ती के तुम खोजी हो, शराबी को राह पर देख लिया, डोलते डमाडोल होते तो तुम्हारे मन में भी आकांक्षा होती है, ऐसा भाव विभोर दशा हमारी भी हो। शराब से तुम्हें मतलब नहीं है, शराब का शायद तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन इस आदमी की मस्ती तुम्हारे मन में ईर्ष्या जगाती। ख्याल रखना, संतों के पास जाके ईर्ष्या भी जग सकती है, प्रार्थना भी जग सकती है। ईर्ष्या जगी तो अड़चन आएगी, तब तुम्हारे भीतर एक बड़ी बेचैनी पैदा होगी कि प्यास तो है नहीं। और प्यास न हो तो जलधार बहती रहे करोगे क्या, कंठ ही सूखा न हो तो जलधार का करोगे क्या। और बिना प्यास के जल पी भी लो तो तृप्ति ना होगी, क्योंकि तृप्ति तो अतृप्ति हो तभी होती। तो पानी पी के शायद वमन करने का मन होने लगे, नहीं जल्दी करना ही ना, धैर्य रखना, भरोसा रखना। जब समय होगा, जब तुम राजी हो जाओगे, पकोगे, और पकने का अर्थ समझ लेना, पकने का अर्थ है जब तुम्हें संसार के सारे रस व्यर्थ मालूम होने लगेंगे, तब रस जगेगा प्रभु का। तुमने अभी संसार के रसों की व्यर्थता नहीं जानी। मैंने कह दिया व्यर्थ है, इससे थोड़ी व्यर्थ हो जाएंगे, मेरे कहने से तुम्हारे लिए कैसे व्यर्थ होंगे। बूढ़े तो समझाए जाते हैं बच्चों को कि खिलौने व्यर्थ हैं, क्या बैठे फिजूल के खिलौनों के साथ समय खराब कर रहे हो, इनमें कुछ सार नहीं है। लेकिन बच्चों को तो खिलौनों में सार दिखाई पड़ता। एक छोटा बच्चा अपनी गुड़िया से बातें कर रहा है, उसकी मां उससे बोली कि बंद करिए बकवास। वो भागा, मां भी ना समझी कि इतनी तेजी से क्यों भागा। फिर थोड़ी देर में लौट आया, बोला अब क्या कहना है, बिना गुड़िया के आया। तो उसकी मां ने कहा कि तू इतने जोर से भागा क्यों, उसने कहा गुड़िया सुन लेती तो दुखी ना होती, उसको मैं सुला आया, अब बोल तुझे क्या कहना है। तुम्हें लगता है वो व्यर्थ बातें कर रहा है, लेकिन उसके लिए गुड़िया अभी जीवित है, अभी गुड़िया को चोट पहुंचेगी। ये बात ही कि गुड़िया से बात न करो, गुड़िया रूठ जाएगी, नाराज हो जाएगी। जो बच्चे का सत्य है वो बूढ़े का सत्य तो नहीं, जो बूढ़े का सत्य है वो बच्चे का सत्य तो नहीं। और कोई बच्चा अगर जबरदस्ती मान के बूढ़ों की बातें की ठीक ही कहते होंगे, सयाने हैं ठीक ही कहते होंगे, फेंका है गुड़िया को तो भी रात सो ना सकेगा, नींद टूट टूट जाएगी। गुड़िया का क्या होता होगा, रात अंधेरे में कोई सताता तो ना होगा, रात अंधेरे में डरती तो ना होगी, रात अंधेरे में बरसा होती भीगती तो ना होगी, कोई जानवर कोई दुष्ट कष्ट तो ना देता होगा, रात सो ना सकेगा, सपने में गुड़िया ही गुड़िया होगी। अभी गुड़िया को छोड़ने का वक्त ना आया था, एक दिन आता है वक्त। एक दिन अचानक बच्चे को दिखाई पड़ता है गुड़िया गुड़िया है, न बोलने में कुछ सार है, न गुड़िया ने कभी कुछ सुना है। मुस्कुरा के अपनी ही किस्म की गई नासमझियों पर हंसकर गुड़िया को एक कोने में डाल के विदा हो जाता, फिर उस तरफ नजर भी नहीं जाती। ऐसा ही जीवन के संबंध में भी है। तुम्हारी कठिनाई मैं समझता हूं, तुम सुख के लोभी हो, धन में पद में जगह जगह सुख खोज रहे हो, वहां अभी सुख मिला नहीं, और अभी ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ कि वहां सुख मिल ही नहीं सकता। यही तुम्हारा द्वंद है, सुख मिला भी नहीं, मिल तो सकता ही नहीं, किसी को कभी भी नहीं मिला। तुम कितने ही बच्चे हो और कितना ही तुम्हारा भरोसा हो कि गुड़िया बोलेगी, गुड़िया कभी बोली नहीं, कभी बोलती नहीं, कोई उपाय नहीं, सुख तो कभी किसी को वहां मिला नहीं, तुम्हें भी नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारी आशा नहीं मरी है अभी। तुम सोचते हो मिल सकता है, गुड़िया बोलेगी, थोड़ी और चेष्टा करूं, थोड़ा और समझाऊं बुझाऊं, थोड़ी और प्रतीक्षा करूं, शायद मैंने श्रम ठीक से नहीं किया, जितना करना था उतना नहीं किया, शायद मेरी दौड़ अधूरी है, मैं ठीक से दौड़ा नहीं, प्राणपण लगाए नहीं दांव पर, एक बार और दांव पर लगा के देख लूं। तुम्हारी आशा नहीं मरी है, तुम्हारी आशा परिपूर्ण रूप से जीवित है, उसी आशा में संसार है, उसी आशा में। जिस दिन तुम्हारी आशा टूट जाएगी, और आशा टूटने का मतलब यह नहीं है कि किसी को सुनकर टूट जाएगी, तो फिर बूढ़े की बात से बच्चा बूढ़ा हो जाता है। अगर किसी की बात सुनकर टूटी तो टूटेगी नहीं, तो मंदिर में बैठ जाओगे, याद बाजार की करोगे, संन्यास ले लोगे, त्यागी होकर हिमालय की गुफा में बैठ जाओगे, याद बच्चों पत्नी की आएगी, और इसमें कुछ भी गलती नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ गलती कर रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपनी टूटी फूटी घड़ी को लेकर घड़ी साच के पास गया। घड़ी ऐसी हालत में हो गई थी कि पहचान में भी ना आती थी कि कभी घड़ी रही होगी। 7 मंजिल मकान से गिर गई थी, जेब घड़ी थी, कुछ देखने को झांकता था खिड़की से, कुछ ज्यादा झांक गया, घड़ी खिसक गई। अब 7 मंजिल से गिरी थी तो सब तहस नहस हो गई थी। घड़ी सांच की टेबल पर जब उसने घड़ी रखी, घड़ी यानी बहुत से कल पुर्जे, टूटे फूटे कांच के टुकड़े, सब तोड़े मुड़े, तो घड़ी सांच ने भी गौर से अपना चश्मा ठीक करके देखा कि क्या चीज है। उसने पूछा, बड़े मियां क्या है? तो नसरुद्दीन का रिहद हो गई, देखा नहीं कि जेब घड़ी। घड़ी साज बोला, अरे तुमने इतना ही वो कह पाया था कि अरे तुमने, कि मुल्ला ने समझा कि वो कह रहा है कि अरे तुमने गिरने क्यों दी। तो मुल्ला बोला क्या कर सकता था, गिर गई, सात मंजिल खिड़की से झांकता था, चूक हो गई। घड़ी साज ने कहा गिरने की तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने उठाई क्यों, अब इसको उठाने में सार क्या है। तुम जिस दिन जागकर देखोगे उस दिन तुम पाओगे जीवन में कुछ था ही नहीं। तो तुम उस दिन ऐसा थोड़ी करोगे कि छोड़ दें, तुम उस दिन सोचोगे कि इतने दिन पकड़े कैसे रहा, घड़ी उठाई ही क्यों। ऐसा थोड़ी कि उस दिन तुम विचार करोगे कह रहे त्याग महान है, उस दिन तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि इतने दिन तक भोग में डूबा कैसे रहा, ये हुआ कैसे, इतना अंधा था, इतना अंधेरे में था, इतना बेहोश था कि जहां कुछ भी ना था। पश्चिम में कहावत है कि दार्शनिक ऐसा आदमी है जो अंधेरी अमावस की रात में अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां है ही नहीं। ये सारे जीवन की कथा है, एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोज रहे हो जो वहां है ही नहीं, मिलने का तो कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन अंधेरा गहरा है और तुम्हारी धारणा है कि बिल्ली काली है, तो खोज जारी है, दिखाई नहीं पड़ रही है, खोजेंगे तो मिल जाएगी, किसी को कभी नहीं मिली, मगर किसी और की सुन के कमरे के बाहर मत निकल आना, अन्यथा भटकोगे, अन्यथा लौट लौट के कमरे में आ जाओगे। नहीं भी आए भौतिक रूप से तो मन आएगा, चिंतन आएगा, विचार आएगा, स्वप्न आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्त्री के साथ आंख खोल के बैठते हो कि आंख बंद करके बैठते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कि तुम वस्तुतः धन को गिनते हो कि कल्पना में धन के सिक्के गिनते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धन मात्र कल्पना है। वो जो नगद सिक्के मालूम पड़ते हैं, बजते हैं पत्थर पे पटको तो, वे भी उतनी ही कल्पना है जितनी आंख बंद करके जब तुम सिक्के गिनते हो, दोनों ही कल्पना है, मगर मेरे कहने से कल्पना ना हो जाएगी। अनुभव उधार नहीं लिए जा सकते। तुम्हारी अड़चन में समझता हूं, कहते हो प्यास नहीं जगती, द्वार नहीं खुलते, तुम उधार अनुभव की आकांक्षा कर रहे हो। उधारी से बचो, उधारी नहीं मारा, उधारी नहीं इतने दिन भटकाया है, अब उधारी बंद करो। अब तो अगर तुम्हें लगता है कि इस संसार में कुछ सुख है तो पूरी कोशिश कर लो, पूरी कर लेना तन मन प्राण से, रत्ती भर बाकी मत रखना, क्योंकि बाकी रखा ही सताएगा, बाकी रखा ही पीछा करेगा। संसार पीछा नहीं करता, संसार में तुम जहां नहीं दौड़े, जो कोने अधूरे रह गए, बिना दौड़े रह गए, वही पीछा करते, जो जान लिया उससे तो छुटकारा हो जाता, जो अनजाना रह गया उसी के साथ बंधन बंधे रह जाते। तो तुम उतरो, प्यास नहीं जगती, जगाओ ही क्यों, अभी संसार की प्यास होगी, दोनों प्यास साथ साथ नहीं हो सकती। असत्य की जब तक प्यास हो तब तक सत्य की प्यास नहीं हो सकती, जब तक झूठ को पीने में रस हो तब तक सच को पीने में रस नहीं हो सकता। तो अभी झूठ में रस है, अभी अहंकार में रस है, अहंकार यानी झूठ, अभी पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सिंहासन मिले, अभी अहंकार में रस है, इस रस को अनुभव कर लो। और डर कुछ भी नहीं है, क्योंकि रस वहां है नहीं, बिल्ली कमरे में है नहीं, इसलिए मैं कहता हूं हिम्मत से खोज लो, कोना कोना खोज लो, पूरे रत्ती रत्ती को खोज डालो। तुम्हारे और महात्मा बहुत डरे हुए, तुम्हारे महात्मा भी उधार मालूम होते, वो तुमसे कहते हैं मत जाओ संसार में, उलझ जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं जाओ, उलझ कैसे सकते हो, उलझाने योग्य वहां है क्या, हां अगर न गए पूरे पूरे तो उलझे रह जाओगे। तो मन सदा कहता रहेगा काश गए होते, शायद मिल जाता, कौन जाने, कुछ हिस्सा अनजाना रह गया, वहीं हो संपदा, उसी जगह से चूक गए हो। तुम्हें पक्का भरोसा कैसे आएगा कि वहां बिल्कुल नहीं था सत्य, झूठ ही झूठ का फैलाव था, प्रपंच ही प्रपंच था। तो मैं तुमसे कहता हूं जाओ, जहां रस हो वहां जाओ, रस को बदलने की चेष्टा मत करो, कहीं तो रस होगा। ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जिसका रस कहीं ना हो, क्योंकि ऐसा आदमी जी ही नहीं सकता, एक क्षण नहीं जी सकता। श्वास ही क्यों लेगा ऐसा आदमी जिसका कोई रस नहीं, सुबह उठेगा क्यों बिस्तर से, जहां बैठ जाएगा वहां से उठेगा क्यों दोबारा, चलेगा क्यों, आंख क्यों खोलेगा। जिस आदमी का कोई भी रस नहीं है वो तो उसी क्षण मृत हो जाएगा, उसी क्षण। एक क्षण भी जीने का कोई उपाय नहीं, जी जीविसा चली जाए तो जीवन चला जाता। तो तुम्हारा रस कहीं होगा, तुम्हारी तकलीफ में समझता हूं। तुम्हारा रस तो तुम्हें दौड़ा रहा है धन पद की तरफ, और तुम्हारे महात्मा तुम्हें पकड़े हैं पीछे से, वो कह रहे हैं कहां जा रहे, वहां कुछ भी नहीं, तुम दुविधा में पड़ गए हो। महात्माओं की सुने बात तो लगती है कि महात्माओं की ही ठीक होगी, भले सज्जन लोग, मगर तुम्हारा दिल कहता है अभी खोज लो। मस्जिद में मौलवी बोला, बोलने के बाद उसने कहा जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हो खड़े हो जाएं। मुल्ला नसरुद्दीन को छोड़ के सभी लोग खड़े हो गए। मौलवी थोड़ा हैरान हुआ, जब सब बैठ गए तो मौलवी ने कहा आप जो नरक जाना चाहते हो वो खड़े हो जाएं। कोई भी खड़ा ना हुआ, मुल्ला फिर भी बैठा रहा। तो मौलवी ने कहा मुल्ला क्या इरादा, कहीं नहीं जाना। मुल्ला ने कहा जाना तो स्वर्ग ही है लेकिन अभी नहीं, और आप तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि बस खड़ी हो बाहर और लोग जाने की तैयारी में, अभी नहीं, जाना तो स्वर्ग ही है लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करने को यहां बाकी है, अभी मन भरा नहीं। ज्यादा ईमानदार आदमी है, जो लोग खड़े हो गए थे उनको भी अगर पक्का पता हो कि बस बाहर खड़ी हो गई तो वो भी बैठ जाएंगे। वो भी सिर्फ आकांक्षा प्रकट कर रहे हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। अभी कौन स्वर्ग जाना चाहता है, अभी तो संसार में बहुत कुछ बाकी है, अभी इरादे बाकी है, अभी अभिलाषाएं बाकी है, अभी सपने टूटे कहां, अभी तो सपनों के इंद्रधनुष फैले, अभी तो बड़े सेतु हैं, अभी तो दूर क्षितिज पर दिखाई पड़ रहे मरुद्धान, अभी तो लगता है ये पहुंचे ये पहुंचे। दिल्ली कितनी ही दूर हो, दूर नहीं, ऐसा लगता कि पास ही है, पहुंचे पहुंचे जाते हैं, दो कदम और कि चार कदम और पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा श्रम थोड़ी मेहनत थोड़ी प्रतीक्षा, मन ऐसा कहे चला जाता है। तुम्हारा रस संसार में, फिर सांसारिक लोगों के चेहरों को देखते हो तो लगता है कि मिलेगा शायद ही, क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं मिला। महात्माओं को देखते हो, संतों को देखते हो, लगता है शायद इन्हें मिला हो शांत आनंदित, मगर अपने भीतर तुम्हारा अनुभव कहता है अभी नहीं, अभी नहीं, और थोड़ा खोज लो, कौन जाने, जो किसी को भी नहीं मिला वो तुम्हें मिल सकता हो। मन की एक बड़ी गहरी बात है, और वो गहरी बात यह है कि मन कहता है तुम अपवाद हो सकते हो। माना किसी को ना मिला होगा, लेकिन इससे क्या यह सिद्ध होता है कि तुम्हें भी ना मिलेगा। मन का एक नियम है कि वो सदा तुम्हें छिपाता है। वो कहता तुम अपवाद हो सकते हो, सारे लोग मरे, पृथ्वी कब्रिस्तान है, रोज कोई मरता है, लेकिन तुम्हारा मन तुमसे कहता है और लोग मरते हैं, तुम थोड़ी मरते हो, तुम कहां मरे, अब तक तुम कहां मरे, कभी अपने को मरा देखा? तो हो सकता है तुम न मरो। मरने के आखिरी क्षण तक आदमी ये सोचता रहता मौत सदा दूसरे की होती, अपनी थोड़ी, अर्थी किसी और की उठती है, अपनी थोड़ी, दूसरों को मरघट पहुंचाते हो तुम, तुमको किसी ने कभी मरघट पहुंचाया? भीतर एक आशा जगी रहती कि शायद परमात्मा तुम्हें इस नियम से मुक्त रखेगा। जब चोर चोरी करने जानता है तो वो भी जानता है कि चोर पकड़े जाते, पर वो सोचता है शायद मैं न पकड़ा जाऊं, और पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते होंगे, कुशल नहीं, कला नहीं आती। जब हत्यारा किसी की हत्या करता है तो जानता है कि हत्या का क्या परिणाम हो सकता है, लेकिन सोचता है मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं, सारा इंतजाम कर लूंगा, पकड़ना संभव नहीं होगा। तुम रोज इस नियम का उपयोग करते हो, कल भी क्रोध किया था पाया, आज फिर क्रोध कर रहे हो, फिर भी सोचते हो शायद इस बार दुख ना हो, शायद इस बार पछतावा ना हो। कितनी बार कांटे हाथ में चुभे और कितनी बार लहू बहा, मगर इस बार सोचते हो फिर कांटे से खेलने, शायद इस बार कांटा फूल बने, शायद कांटा इस बार दया करे, शायद अब तुम इतने कुशल हो गए हो जीवन के अनुभव से कि अब कांटा तुम्हें न सता पाए। ऐसा मन बचाए चला जाता। जिस व्यक्ति को संसार में जीवन का शाश्वत नियम दिखाई पड़ जाता है कि मैं भी अपवाद नहीं हूं, मेरी भी मौत होगी, मैं भी मिट्टी में गिरूंगा, आज नहीं कल धूल में पड़ा रहूंगा, यहां पद और प्रतिष्ठाएं कहीं भी मुझे बचाने वाली नहीं, कितना ही धन हो तो भी मौत से कोई सुरक्षा नहीं। जिस दिन व्यक्ति को ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ जाता है उस दिन जीवन में एक क्रांति घटती। उस दिन जो सारी प्यास नियोजित थी संसार की तरफ बाहर की तरफ, वही सारी प्यास भीतर की तरफ नियोजित हो जाती, परमात्मा की तरफ नियोजित हो जाती। प्रतीक्षा करो, आस की जा फजा भी होती है और सब्र आजमा भी होती है, रूह होती है कैफ परवर भी और दर्द आसना भी होती है, प्रेम बेचैन भी होता है पाने को, आस की जा फजा भी होती और सब्र आजमा भी होती, प्रेम बेचैन होता है पाने को और फिर भी धैर्यवान होता है, प्रतीक्षा भी करता है। प्रेम के दो विरोधी पहलू हैं, प्रेम बेचैन होता है, आतुर होता है मिल जाए, और साथ ही प्रतीक्षा तुर होता है। अगर जन्मों जन्मों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो प्रेम प्रतीक्षा भी करता है। ये विरोधाभास है, ऊपर से तुम्हारे समझ में ना आएगा। तुमने देखा प्रेसी को द्वार पर बैठे अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते, कैसी बेचैन, पत्ता भी हिलता है सूखा तो उठ के खड़ी हो जाती कि शायद प्रेमी आ गया, हवा का झोंका लगता है द्वार पर, दौड़ के आती खोलती द्वार, शायद प्रेमी आ गया। तुमने देखा नहीं कभी किसी पत्र की प्रतीक्षा कर रहे कोई राह से गुजरता भागे कि कहीं डाकिया तो नहीं आ गया? हजार काम में लगे रहते हो लेकिन मन द्वार पे लगा रहता है, मेहमान आता ना हो, आना गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उलझे रहो मेहमान आया और चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वागत को मौजूद ना रहो। बड़ी बेचैनी होती, त्वरा होती, लेकिन साथ ही बड़ी सब्र भी होती। अगर जन्मों जन्मों तक भी ऐसी प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी प्रतीक्षा में रस भी है, प्रतीक्षा करेंगे। तो प्रेम में अधैर्य भी है और धैर्य भी, प्रेम विपरीत का संगम है। तो एक तो अगर प्यास अभी पैदा नहीं हुई तो घबराओ मत, जल्दबाजी भी ना करो, जीवन के अनुभव को भोगो। अगर सोचते हो कि संसार से तो छूट गया है रस, सुन के नहीं जानकर, अगर सोचते हो कि संसार तो विरस हो गया है, तो फिर थोड़ा सा सब्र रखो, आता ही होगा दूसरा रस, आता ही होगा, थोड़ी सब्र रखो। दोनों के बीच थोड़ा सा अंतराल भी होता है कभी, दोनों यात्राओं के बीच थोड़ा सा विराम भी होता है। एक दौड़ समाप्त होती है, दूसरी दौड़ शुरू हो, इसके बीच बीच में थोड़ा पड़ाव भी होता है। हो सकता है तुम्हारा रस सच में ही समाप्त हो गया हो संसार से, तो फिर घबराओ मत, फिर थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र, थोड़ी प्रतीक्षा, जल्दी ही दूसरी दौड़ शुरू होगी। बाहर दौड़ते रहे सदा, अब रुकावट आ गई तो ऊर्जा को थोड़ा मौका दो मुड़ने का, पीछे की तरफ जाने का, नई आदत बनाने का, नई शैली, नया ढंग सीखने का, नई दिशा खोजने का, थोड़ा मौका दो। साधारणतः आदमी ऐसा है, जैसा फोर्ड ने सबसे पहली कार बनाई तो उसमें रिवर्स गियर नहीं था, ख्याल ही नहीं था, आगे जाने के लिए तो गियर था, पीछे जाने के लिए कोई गियर नहीं था। ये तो अनुभव से आया समझ में कि ये तो बड़ी झंझट की बात है, आगे तो चले गए फिर घर लौटना तो मीलों का चक्कर लगा के आना पड़ता, पीछे लौटने का उपाय ही नहीं। अगर अपने गैरेज के भी बाहर निकाल लिया और गैरेज में गाड़ी रखनी है तो भी पूरे गांव का चक्कर लगा के आओ तब गाड़ी रख सकते, नहीं तो रख नहीं सकते, तो फिर रिवर्स गियर डाला। अब तुम्हारे मन की जो गाड़ी है जन्मों जन्मों से बिना रिवर्स गियर के चलती, उसमें कोई रिवर्स गियर नहीं, बस आगे की तरफ जाती, बाहर की तरफ जाती, दूसरे की तरफ जाती, अपनी तरफ तो आने का कोई उपाय ही नहीं, अपने गैरेज में तो आने की तुमने कभी सोची ही नहीं। अभी तो तुम सारा संसार का चक्कर लगाओगे तभी अपने पे आ पाओगे, और संसार बड़ा है, जन्म जन्म लग जाते हैं तो भी चक्कर पूरा नहीं होता, विराट है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा बाहर से रस सच में चला गया, लेकिन थोड़ी देर लगेगी कि रिवर्स गियर पैदा हो जाए। संभावना तो है, जंग खा गया है, पड़ा तो है भीतर, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें बाहर ही जाने के योग बनाया ऐसा नहीं, तुम्हें भीतर जाने के योग भी बनाया, अंततः तो भीतर जाना ही है। इसलिए तुम्हारे यंत्र में कोई भूल चूक नहीं है, लेकिन अनुपयोग से जन्मों जन्मों तक भीतर मुड़ने की चेष्टा तुमने कभी की नहीं, लौट के कभी देखा नहीं। जैसे एक आदमी कभी गर्दन लौट के ना देखे तो गर्दन अकड़ जाएगी, फिर अचानक वर्षों के बाद एक दिन तुम पीछे लौट के देखना चाहो, गर्दन जवाब दे देगी, मांसपेशियां सख्त हो गई। ठीक ऐसी ही मन की दशा है, तो थोड़ा सब्र, थोड़ी प्रतीक्षा। प्यास नहीं जगती, द्वार नहीं खुलते, द्वार कैसे खुले? प्यास ही तो चोट है द्वार पर। जब तुम प्यासे होके तड़फते हो, जब तुम प्यासे होके मछली की तरह तड़फते हो, जैसे मछली को किसी ने पानी से निकालकर तट पे डाल दिया हो, जब संसार तुम्हारे लिए ऐसा हो जाता है जैसे मछली के लिए जलती हुई रेत, और तुम परमात्मा के लिए ऐसे तड़फते हो जैसे मछली वापिस सागर में उतर जाने को तड़फती, उसी तड़फन में तो तुम दरवाजे पे चोट देते हो। जीसस ने कहा है खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे, लेकिन खटखटाने का मतलब, यहां कोई भौतिक द्वार थोड़ी लगे हैं कि तुम गए और साकल पकड़ी और खटखटा दी, ये भीतर के द्वार की बात हो रही, यहां कोई भौतिक द्वार नहीं, ना कोई साकल लटकी है जिसे तुम खटखटा दो। ये तो जब तुम्हारे प्राणपण से उठेगी एक अभीप्सा, जैसे तुमने पत्नी को चाहा, बच्चे को चाहा, धन पद को चाहा, संसार को चाहा, जिस दिन तुम्हारी सारी चाहत एक धारा में गिर जाएगी और तुम परमात्मा को चाहोगे, उसी दिन द्वार खुल जाएगा। उतनी बड़ी धारा के सामने कौन द्वार अटका रह सकता है, कौन द्वार अड़ा रह सकता है? पूर आ गया, बाढ़ आ गई, तुम्हारी सारी ऊर्जा चली बहकर, सब द्वार दरवाजे टूट जाते। और द्वार कुछ लगा थोड़ी है, कुछ ताले थोड़ी पड़े। परमात्मा अपने आप को तुमसे बचा थोड़ी रहा है, परमात्मा तो तुम्हें पुकार रहा है, तुमने ही नहीं सुना। परमात्मा तो रोज तुम्हारे द्वार पर खटखटा रहा है, लेकिन तुम जब तक परमात्मा के द्वार पर खटखटाओ ना, तब तक मेल ना हो, मिलन ना हो, कैसे हो? तो प्यास अगर न जगे तो निश्चित ही द्वार भी नहीं खुलते। तो दो बातें, एक, अगर संसार में रस हो तो जल्दी मत करो। परमात्मा ने संसार दिया ही इसलिए है कि ताकि तुम इसके अनुभव से गुजरो, ताकि इसका अनुभव तुम्हें बता दे कि बाहर कुछ भी नहीं, पाने योग्य कुछ भी नहीं, दौड़ है खाली, रिक्त, हाथ खाली के खाली रह जाते, प्राण कभी भरते नहीं। संसार एक अनुभव है। मुल्ला नसुद्दीन ने अपने छोटे बेटे को कहा कि तू सीढ़ी पे चढ़ जा, वो सीढ़ी पे चढ़ गया। मुल्ला ने उससे कहा कि अब तू कूद जा, आ मेरे हाथ में कूद जा। बेटा थोड़ा डरने लगा, उतने ऊपर से कूदे कहीं हाथ से खिसक जाए, गिर जाए। मुल्ला ने कहा डरता क्या है, अरे अपने बाप पे भरोसा नहीं। बेटा कूदा और मुल्ला हट गया, धड़ाम से जमीन पे गिरा, रोने लगा और कहने लगा कि आपने क्या किया। मुल्ला ने कहा एक पाठ सिखाया, अपने बाप का भी कभी भरोसा मत कर, भरोसा करने ही मत। ये बुद्धिमान आदमी का लक्षण, समझा? परमात्मा ने संसार बनाया, एक अनुभव है। यहां बाहर का भरोसा मत करना, यहां बड़े प्रलोभन है, सुंदर प्रलोभन है। दूर के ढोल हैं और बड़े सुहावने, बस दूर से ही सुहावने, पास गए, जैसे जैसे पास गए सब सुहावनापन खो जाता है। जब बिल्कुल पास पहुंच जाते हो तो मृग मरीचिका सिद्ध होती। और संसार को बनाया इसलिए कि जो वास्तविक धन है वो तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे निर्धन रहोगे। जिस दिन बाहर की सारी खोज से तुम थक जाओगे, थके मांदे बाहर की खोज को छोड़ दोगे, बंद करोगे आंख, डूबोगे अपने में, पाओगे सब धनों का धन वहां मौजूद था, तुम्हें परमात्मा ने सम्राट बना के भेजा। लेकिन उस सम्राट होने की क्षमता तुम में आएगी तभी जब तुम बाहर के सब भिकमंगेपन का अनुभव ले लो। भिकमंगा हुए बिना सम्राट होने का अनुभव नहीं आता। जिसने अंधेरा नहीं देखा उसे रोशनी दिखाई नहीं पड़ सकती, और जिसने कांटा नहीं जाना उसे फूल के सौंदर्य का पता नहीं हो सकता। जिसने व्यर्थता को अनुभव नहीं किया उसके जीवन में सार्थकता का अवतरण नहीं हो सकता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि संसार आखिर है ही क्यों? संसार इसीलिए कि ताकि विपरीत का तुम्हें अनुभव हो जाए। देखते ना, स्कूल में बच्चों को हम पढ़ाते तो काले ब्लैक बोर्ड पर सफेद खड़िया से लिखते, सफेद बोर्ड पे भी लिख सकते, लिख तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जा सकेगा। तुम कभी नहीं पूछते कि काले तख्ते पर क्यों लिखते? काले तख्ते पर सफेद अक्षर उभर के दिखाई पड़ते। सफेद तख्ते पर लिखोगे तो काले अक्षर से लिखना पड़ेगा, तब उभर के दिखाई पड़ेंगे। ये संसार काला ब्लैक बोर्ड है, इसमें तुम्हारे जीवन की जो ऊर्जा है वो शुभ्र प्रकट हो सकती, इसके बिना प्रकट नहीं होगी। संसार का दुख पृष्ठभूमि है, इसी पृष्ठभूमि में सच्चिदानंद प्रकट होता है, और कोई उपाय नहीं। मृत्यु की पृष्ठभूमि में ही जीवन प्रकट होता है, असफलता में ही सफलता, विषाद में ही आनंद, खोने में ही पाने का पता चलता है। प्यासे होगे तभी तो कंठ तृप्त होगा, भूखे होगे तभी तो संतुष्टि होगी। ये संसार परमात्मा का ही उपाय है। इस संसार में गए बिना तुम कभी अपने पर ना आ सकोगे। अगर नहीं गए हो संसार में, अभी भी मन में कुछ रस लगाव रह गया, जाओ, बेझिझक जाओ, मत सुनो किसी और की। सुन भी लो सबकी तो भी गुनो अपनी, जाओ। जब तुम ही पाओगे कि रेत ही रेत है और रेत से तेल नहीं निचुड़ता, उस दिन तुम आओगे, उस दिन ही शास्त्र जो कहते हैं वह तुम्हारी समझ में आएगा, अनुभव से समझ में आएगा। उस दिन द्वार खुल जाएंगे, उस दिन द्वार पर जरा भी बाधा नहीं पाओगे। द्वार खुले ही हैं, बहकी बगियां महकी कलियां, गूंजे आंगन झूमी गलियां, खुली न मेरी किंतु कवरियां, सांकल कौन लगाई कि खोलत उमर सिराई, ऐसी शुद्ध बिसराई कि पाती तक न पठाई, मन की कुटिया सूनी सूनी बनी चंदन की धूनी, बहुत हुई प्री आंख मिचौनी, अब तो हो सुनवाई सुबह संध्या बनाई, ऐसी शुद्ध बिसराई कि पाती तक न पठाई, जब सुबह सांझ बन जाएगी खोजते 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 खोजते, जब हारे थके दौड़ते दौड़ते तुम गिर पड़ोगे, उसी क्षण सांकल खुलेगी, द्वार खुलेगा, उसी क्षण प्रभु अवतरित होता है। संसार का प्रगाढ़ अनुभव प्रभु को खोज लेने की अनिवार्य प्रक्रिया है। परमात्मा के विपरीत नहीं है संसार, परमात्मा को खोजने की व्यवस्था है संसार। तब तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें जो कहते हैं उसमें बहुत मूल्य नहीं है। वे तो तुम्हें ऐसा समझाते हैं कि संसार परमात्मा का दुश्मन है और परमात्मा संसार का दुश्मन है। ये बात बड़ी अजीब है और तुम कभी उनसे पूछते भी नहीं, क्योंकि वे ही तुम्हें यह भी समझाते हैं कि संसार परमात्मा ने ही बनाया, वही सृष्टा, और फिर यह भी समझाते हैं कि संसार परमात्मा का दुश्मन है। ये दोनों बातें ठीक हो नहीं सकती। अगर उसने ही बनाया तो दुश्मन कैसे होगा, और अगर दुश्मन है तो उसने कैसे बनाया होगा? नहीं, संसार परमात्मा का दुश्मन नहीं है, संसार परमात्मा की तरफ जाने की अनिवार्य यात्रा है, अनिवार्य यात्रा। इसको तुम छोड़ छाड़ के भाग के बीच से परमात्मा को न पा सकोगे। यह परीक्षा है, इससे गुजर जाना जरूरी है।
आज के प्रोग्राम में लिया गया संगीत करुणेश की एल्बम से तथा स्वामी ध्यान प्रदीप के संगीत से लिया गया है। स्वामी ध्यान प्रदीप जर्मनी में सुर संगम स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक चलाते हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए मेडिटेशनल म्यूजिक भेजने का अनुग्रह किया है। आज का ध्यान हम उन्हीं के संगीत के साथ करेंगे। शांत मौन बैठकर, तो आइए आराम से शांत व सहज मुद्रा में बैठ जाएं। धीरे से आंखें बंद कर लें। मधुर संगीत को अंदर घुलने दें। संगीत परमात्मा को अपनी रग रग में फैलने दें, समाने दें।
तो मित्रों, अमावस की रात में अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढ ही लेना है सब तरफ। उसके बाद ही ध्यान का संग होगा, प्रेम का रंग होगा और होगा खुले आकाश में विचरण। जीवन कहेगा उड़ियो पंख पसार, हम कहेंगे उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। ओशो के आशीषों के साथ हमारा प्रेम भरा नमस्कार आप सभी को।